सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं, जहां दूसरा प्रकरण चल रहा है, जिस प्रकरण का नाम है बोध प्रकरण है। बोध माने ज्ञान का प्रकरण है। यहां हमें अपने विषय में जानना है, इस जगत के विषय में जानना है और ईश्वर के विषय में जानना है। तो बताया गया, जगत तो रस्सी में दिखने वाले सर्प की तरह कल्पित है, उसकी वास्तविक सत्ता है ही नहीं। ईश्वर और जीव के विषय में निश्चय किया गया कि स्वरूपतः इन दोनों में कोई भेद है ही नहीं। ध्यान देना, अविद्या और अविद्या के कार्य के जो बस में हो जाए उसका नाम हो जाता है जीव, और जो अविद्या और अविद्या के कार्य इस जगत को बस में कर ले या जो इसके बस में न होवे उसका नाम क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। तो हम अपने आप को जान लिए। अच्छा हाँ, तो ज्ञान तीन अवस्था में हुआ। एक ज्ञान हुआ, बोलो भाई, परोक्ष ज्ञान, शास्त्रों के द्वारा मुझे अपने स्वरूप का बोध हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, इन तीनों प्रकार के शरीरों और पांचों कोषों से अतीत, इनको सत्ता देने वाला, इनसे अलग मैं कुछ और ही हूं, वह मेरा रूप है सत चित और आनंद, असंग व्यापक जो भी है आत्मा के जो स्वरूप बताए गए वो मेरा अपना स्वरूप है। इसे हमें जाना है, कहां जाना है, बोलो भाई, शास्त्र से। अभी कहां जाना है, शास्त्र से जाना। लेकिन मेरा यही स्वरूप है, इसको समझने के लिए हम किसके पास गए, गुरु के पास गए। तो गुरु ने युक्तियों से उस आत्म तत्व को प्रत्यक्ष करा दिया। जैसे युक्ति मैंने आपको वहां बताई थी, प्रैक्टिकल करके दीपक रखा जलता हुआ घड़े के ऊपर, अब घड़े में पांच छेद करके पांच वस्तुएं रखा, अब बताओ उन वस्तुओं का प्रकाशन, उन वस्तुओं का ज्ञान किससे हो रहा है, घड़े से, छेद से, तेल से, अथवा तेल में जो लगी हुई बत्ती है उससे नहीं, किससे हो रहा है? प्रकाश से हो रहा है। जैसे ही उन वस्तुओं का ज्ञान प्रकाश से हो रहा है, ऐसे संसार में जो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच विषयों का ज्ञान करते हैं, वह ज्ञान शरीर से नहीं करते, इंद्रिय गोलक रूपी छिद्र से नहीं करते, कि करते हैं मन अथवा प्राण से नहीं करते हैं, बल्कि किससे करते हैं? स्वयं प्रकाश चैतन्य से, जो प्रकाशक का भी प्रकाशक है। क्योंकि देखो, प्रकाश भी स्वयं वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता है, कि कर सकता है? प्रकाश को आंख चाहिए, आंख न हो, आंख के साथ साथ मैं चाहिए। आंख में क्या होगा? मैं मिलूंगा, मतलब मुझ चैतन्य का प्रकाश आंख के माध्यम से बाहर निकल करके प्रकाश का ज्ञान करेगा। यदि आंख न हो तो बताओ प्रकाश क्या है? कोई कीमत है क्या? तो प्रकाश की प्रकाशता भी मेरे अधीन है। प्रकाश की प्रकाशता को जानने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? लेकिन मुझे जानने के लिए क्या किसी प्रकाश की आवश्यकता है क्या? मैं तो कहता हूं प्रकाश को जानने के लिए आंख की आवश्यकता है, लेकिन मुझे जानने के लिए क्या चाहिए? आंख चाहिए क्या? कि उसे हमें लगता होगा, उसे हम लोग मजाक में बोलते हैं कि जब माताएं घर से बाहर जाती हैं ना, तो क्या देख के जाती हैं? शीशा, मतलब मिरर। और जब वापस आती हैं ना, तो क्या देखती हैं? फिर शीशा देखती हैं। तो हमें लगता होगा जाते वक्त देखना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आते वक्त क्या हो सकता पड़ गई देखने की? तो लगता है कंफ्यूज हो जाती होंगी बेचारी कि जो गई थी वही आई है, कहीं उसके लिए दूसरी नहीं आ गई। तो हम अपने शीशे को मुंह देख करके अपने आप का बोध कर लेते ना, जो गया था वही आया है, क्या इसलिए देखते हैं क्या? नहीं नहीं भाई, अरे कैसा भी रूप बदल जाए, लेकिन हमें अपने आप को सिद्ध करने के लिए, हमें अपने आप को जानने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, देखो मैं हूं अथवा नहीं हूं, छू करके देखना नहीं पड़ेगा मैं हूं अथवा नहीं हूं। आप तो स्वयं क्या हो? सिद्ध हो। और जो जिसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य सत्ता की आवश्यकता न हो, उसका नाम क्या है? स्वयं प्रकाश है। और जिसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़े, उसका नाम है पर प्रकाश। तो सारा का सारा संसार क्या है? स्व प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश नहीं है, क्या है? इसको सिद्ध करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? यहां तक प्रकाश की प्रकाशता को भी सिद्ध करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आंख की आवश्यकता पड़ती है। शब्द की शब्दत्व को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। संसार के किसी भी विषय भोग के लिए हमें किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होगी। लेकिन अपने को सिद्ध करने के लिए, अपने को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए, बताओ। इसलिए हमें बहुत बढ़िया आजकल लगता है, पहले जब हम लोग फार्म भरते थे ना, फार्म है नौकरी आदि के लिए, तो पासपोर्ट साइज फोटो लगता था, है ना? तो उसमें किसी न किसी से सिग्नेचर कराना पड़ता था, अटेस्टेड कराना पड़ता था, किससे? किसी न किसी गजटेड ऑफिसर से। अब वो सिस्टम समाप्त करके अब कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटो लाओ। आजकल वो सिस्टम समाप्त कर दिया, गजटेड से जाओ, बगैर लंबा लाइन लगाना पड़ता था, क्या क्या। अब वो हमें क्या सिद्ध करेगा बताओ? अपनी सिद्धि तो हम किसको कर सकते हैं? अपने आप को ही कर सकते हैं। हम अपने दस्तखत जो बदल देंगे, हमारे दस्तखत की सिद्धि तो कौन करेगा? हम ही करेंगे। वो हमारी सिद्धि क्या करेगा बताओ? उसकी जगह तो हम गलत भी लगा सकते हैं, गलत लगा के गलत सिद्ध करवा लो जाके, क्या करोगे? लेकिन अपनी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए हम पापी हैं अथवा पुण्यात्मा हैं, उसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? किसी से पूछना पड़ेगा क्या? लेकिन दूसरा यदि हमारे बारे में पापी अथवा पुण्यात्मा बोलेगा, तो हो सकता है दूसरा का प्रमाण क्या हो? सत्य झूठ हो सकता है। भाई दूसरा हमें क्या प्रमाणित करेगा? वो तो झूठ भी कर सकता है। हम हैं पापी, अरे आपने हमें कहा महाराज जी आप तो बड़े क्या है पुण्यात्मा, अथवा हम हैं क्या पुण्यात्मा, आपने हमें क्या कर दिया पापी कर दिया। तो आपका जो प्रमाण होगा हमारे विषय में वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरा अपना जो प्रमाण होगा वह कभी गलत हो नहीं सकता है। तो संसार के सारे विषयों की जो सिद्धि हो रही है वह किसके अधीन है? बोलो भाई, आपके अधीन है। हम तो साफ कहते हैं विषयों को महत्व आपने दिया है। अरे विषय की क्या कीमत है बता? सोने की क्या कीमत है बताओ? गोल की जब मेटल बन ली, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे कापर हो, उसकी महत्व को किसने बढ़ाया बताओ? हमने ही बढ़ाया, नहीं तो सोना सोना है और क्या। संसार की जो कीमत को हमने बढ़ाया है, उसकी महत्व को जो हमने बढ़ाया है, किसने बढ़ाया है? हम सब ने बढ़ाया है। यदि हम उसकी सत्ता को न सिद्ध करें तो वो वस्तु क्या रहेगी? दो कौड़े किसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती है। ना हुआ है ऐसा? ऐसा होता नहीं होता है भाई। अभी एक करेंसी बंद हो जाए, हजार रुपए के नोट, हजार रुपए के नोट क्या है? और रातों रात बंद हो जाए हैं? बताओ क्या हो जाएंगे? कागज के ढेर जलाओगे और क्या करोगे? ऐसा हुआ कभी? कहते हैं हाँ एक बार हुआ था। तो लोग क्या कहते हैं कि इतने 12 बजे तक बताया गया कि बैंक में जमा करना हो कर लो, बड़ी लंबी लाइन लग गई, इसके बाद जिसके नहीं जमा हो गए तो बेकार हो गए। नहीं बताओ कागज तो उसकी वैल्यू को किसने दिया है? हम सबने इसको एक व्यवहार चलाने के लिए महत्व दे दिया है, लेकिन वास्तव में संसार की किसी विषय भोग की कोई महत्व है ही नहीं। तो सबको सिद्ध करने वाले कौन है? हम तो कहते स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, इसको सिद्ध करने वाला कौन है मुझे बता दो? हैं? आप स्वयं हो, और स्वयं उसको सिद्ध करके और उसके पीछे पीछे गुलाम बन जाते हो, उसके दास बन जाते हो, उसके उसके उसकी प्राप्ति में उसके हाथ पांव जो उगलना शुरू कर देते हो, जबकि उसकी वैल्यू को सिद्ध किसने कर दिया? हमने ही किया है। आपने उसी को ऊपर उठाया, और जिसको आपने ऊपर उठाया उसी के आप क्या बन गए? चाटुकार गुलाम बन गए। जबकि आपको होना क्या चाहिए? उसके मालिक बनना चाहिए। नहीं, अरे भाई आप किसी को, बच्चे को, नाली में पड़ा हुआ बच्चा कहीं अनाथ आश्रम से लाया हुआ बच्चे को पाला पोसा बढ़ाया, इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनना ऊंचे पद पर बैठा दिया, तो उसको ऊपर उठाने वाला कौन था देखा जाए? आप थे। अब बाद में उसी बच्चे के आप क्या बन गए? गुलाम बन गए। अरे उसको कीमत देने वाले कौन थे? आप थे। अरे आप उसी के क्या बन गए? गुलाम। तो किसकी कमी है, आपकी कि उसकी? हमने ही इन विषयों को बहुत महत्व देकर गुलाम दिए, जबकि महत्व देकर के हमें उसको मालिक बनना था। हमने तुमने इसकी वैल्यू दी है, नहीं तो तुम्हारी कोई वैल्यू, संसार की कोई कीमत? अभी चर्चा हो रही है, कोई कहता है मैं आज एक बार अमेरिका चला जाऊं। अमेरिका गया लगता बहुत ऊंची, गांव में तो और भी है। अरे उनका बेटा कहां रहता है? विदेश में रहता है। और यहां तो हर घर से कोई न कोई विदेश गया है, अब विदेश लौट के आते हैं। हमने तो लौट के जो आया उसके सींगूंग तो देखी नहीं, वो भी जमीन पे ही चलता है, ऐसा कोई आसमान पे तो चलता नहीं। वही खाता है, वही पीता है, वही सोता है, बस एक मन का क्या है? हम तो रोज कहते हैं आपके पास 1 अरब रुपए इकट्ठे हो गए, खाओगे कितना? बोलो भाई, 2 फुलके, करोड़ों सेट कपड़े पहन लो रख लो, इन पहनों के कितने? हमने ही महत्व दे दिया है। उस 10 गाड़ियां हो जाए चलोगे कितने से? बोलो भाई, एक से चलोगे ना? महत्व तो हमने ही दे दिया है। कितना भी बड़ा हो जाए व्यक्ति, लेकिन उपयोगिता की जितनी सामग्री है उससे ज्यादा वह उपयोग कभी कर ही नहीं सकता है। इसलिए इन संसार को बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता, महत्व दो तो उसके गुलाम है मत बनो, उसके क्या बनो? बादशाह बनो। तो इसे प्रैक्टिकल के द्वारा गुरु ने उस ब्रह्म तत्व को क्या किया? आपके सामने रख दिया, कर दिया। अब उसको विचार खुद करो, अब विचार करके अपनी असंगता का, अपनी व्यापकता का, अपनी सत स्वरूपता का, चित स्वरूपता का, आनंद रूपता का अनुभव करो। अच्छा देखो, हम सत स्वरूप है या नहीं है बताओ? बोलो भाई, है ना? पक्का? कितनी उम्र हो गई आपकी? बोलो भाई, सब बोलेंगे 50 साल 60 साल। तो किसकी उम्र हो गई? आपकी की 25। कब पैदा हुए थे? लेकिन अभी बोल रहे हो इसे बताओ कि महाराज 1967 में पैदा हुआ था, कब मरोगे? महाराज जी 2-4 साल का मेहमान हूँ, अब चला ही जाऊंगा। लेकिन यथार्थ यही है कि न आप पैदा हुए थे न आप मरोगे, सही बता रहा हूँ, मरोगे नहीं। दूसरा आपको कहेगा कि मर गया, लेकिन जो मरा है न वो कभी नहीं कहने आता है कि कहता है कि मैं मर गया हूं, बल्कि मरना क्या है, एक शरीर, एक मिथ्या शरीर से मैं बुद्धि हटा करके दूसरी मिथ्या शरीर में मैं बुद्धि कर लेना, इसका नाम मरना जीना, जो भी कह दो। यदि इसी को मरना कहो तो हम यहां सपना देखते हैं ना, सोते हैं, तो सोते से यहां इस शरीर से मैं बुद्धि हटाया मैंने, अब किस शरीर में मैं बुद्धि कर लिया, स्वप्न के शरीर में मैं बुद्धि कर लिया। अभी यहां इतना है स्वप्न में इस शरीर से थोड़ा संबंध रहता है, किस शरीर से, जो सोया है, इसे स्वप्न से फिर से कहां जाता है, इस शरीर में आ जाता है, पूरी तरह से संबंध बिगाड़ते नहीं हो, किससे, जो सोया हुआ शरीर है इस शरीर से पूरी तरह से संबंध बिगाड़ते नहीं हो, इसलिए स्वप्न में जाकर के थोड़ी देर घूम करके क्या करते हो, आ जाते, वापस आ जाते हो। अब मरने के बाद क्या हो जाता है, इस शरीर से पूरी तरह से संबंध क्या कर लेते हो, एकदम तोड़ लेते हो, और उस मिथ्या शरीर में मैं बुद्धि कर लेते हो, तो आप मरने वाले को कभी लगेगा क्या मैं मरा हूं, ये मेरे बता दो, बोलो भाई मत। हाँ हमें लगेगा को मर गया, दूसरे व्यक्ति को लगेगा, लेकिन मरने वाले से पूछो तू मरा क्या, तो कहेगा मरना क्या होता है, सही बता रहा हूं। जैसे सूर्य से पूछो कि अंधकार है क्या, तो सूर्य क्या बताएगा, ये अंधकार किस चिड़िया का नाम है, हमने आज तक तो देखा नहीं, भैया मेरे को दिखा दे, कौन, सूर्य कहे मेरे को अंधकार दिखा दे, अंधकार को पकड़ के ले जाओ सूर्य के पास, तो पहुंच पाएगा क्या, क्योंकि सूर्य के पास जाते हो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसी प्रकार से उस मरने वाले व्यक्ति से पूछो तू मरा क्या, तो मरने वाले व्यक्ति को अपने मरने का एहसास नहीं होगा, क्यों, जिसे स्वप्न हम देखते हैं, तो स्वप्न देखते समय स्वप्न का स्वप्नत्व नहीं होता है, जागने के बाद स्वप्न को स्वप्नत्व हम बोलते हैं। तो एक मिथ्या शरीर से मैं बुद्धि हटा करके दूसरी मिथ्या शरीर में, दूसरी से हटा करके तीसरी मिथ्या शरीर में मैं बुद्धि करने का नाम ही मरना हो जाता है, अन्यथा कोई मरना वरना नहीं है। क्या हम मरते हैं बताओ, अच्छा आपको अपने न मरने का एहसास होता ही नहीं रहता, देखना कभी भी आप देखना कितनों को आप शमशान में भेज के आए हो, लेकिन कभी लगता है क्या मैं भी जाऊंगा, सही बताना, अंदर से नहीं लगता, भले बोल दो महाराज जी 80 साल हो गए अब तो 2-4 साल में चले जाएंगे, हम बोलने को बोल देते हैं लेकिन कभी नहीं लगता कि, अच्छा आपको कभी लगता है क्या मैं बड़ा हो गया इतना, बोलो, सही बात, ये भी नहीं लगता है। हमें लगता है जो मैं कल था ना आज ही वही हूं, इस उम्र के बाद भी आप क्या करोगे, आगे भी वही रहोगे, क्योंकि आप में किसी भी प्रकार का कोई विकार होता नहीं, इसलिए आप अविकारी हो, ये अनुभव करो, अपने आप को जानो। अच्छा दूसरा, ये तो आप सब स्वरूपता का जान गए, बोध कर गए, आप मरने वाले नहीं हो, एक प्रैक्टिकल की दृष्टि से देख लो, व्यवहारिक दृष्टि, वो यथार्थ नहीं है, व्यवहारिक है, कि एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के पहले पैदा हुआ सुख भोग रहा है, एक बच्चा पैदा हुआ वो दुख भोग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसने कोई न कोई पुण्य कर्म किए होंगे, इसे सुख दुख है नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, सुख भी आपकी मन की मान्यता है और दुख भी आपकी मन की क्या है, मानता है, जिसको आप सुख समझते हो ना उसी को दूसरा व्यक्ति क्या समझ सकता है, दुख समझ सकता है, मैं सच बता रहा हूं, दुखी समझता है। हम अपने पिताजी को अभी गांव से ले आवे शहर में, वो कोई कल माता बता रही थी नहीं, कोई एक महात्मा यहां बंबई में आए कोई स्वाध्याय कराने के लिए, 10-5 दिन रहे सारे यहीं, यहां का शोरगुल हाय तोबा करके मेरे बीच में कथा छोड़ के चले गए थे, कह रहे थे बाप मैं तो बंबई भूल करके भी नहीं आऊंगा, है हुआ ना, कोई बता रहा था कल हमारे कमरे में ही। आप बताओ जिसके लिए बंबई क्या है, सुख रूप है, महाराज जी बढ़िया एसी कमरा, बढ़िया सुख सुविधा, खाना पीना, वही दूसरे के लिए क्या लग रहा है, अपना तो हरिद्वार ऋषिकेश क्या है बहुत बढ़िया है, कहेगा नहीं कहेगा बताओ, आप मुंबई में रहते हो इसलिए आपको क्या लगता है, महाराज जी थोड़ी देर के लिए कहां जाओ, हरिद्वार जाओ, बड़ा अच्छा लगता है, गंगा जी बह रही है, पहाड़ है, ये है। तो बताओ सुख कहाँ है, बताओ न सुख वहां है न सुख यहां है। ध्यान ना, ये सुख भी आपकी मन की क्या है, मानता है, और दुख भी आपकी मन की मानता है। लेकिन चलो व्यवहार में हम बोल देते हैं, जिसके पास अनुकूल पत्नी हो जाए, आज्ञाकारी पुत्र हो जाए, वैभव हो जाए, आज्ञाकारी नौकर हो जाए, उस व्यक्ति को आप क्या मानते हो, सुखी मान लेते हो। उसे सुखी है कि नहीं वो तो वही जानेगा, लेकिन आप मान लेते हो सुखी है, चलो ठीक है। अरे कभी कभी आज्ञाकारी पत्नियां भी दुख देती हैं, आप मालूम नहीं मालूम है, जब तक पति को खिलाएंगे नहीं तब तक बेचारी, अब बेचारा ऑफिस गया है, पत्नी को वही चिंता हो रही है, जब तक पहुंचूंगा नहीं घर में वो खाएगी नहीं, वो बेचारी मेरी वजह से दुखी हो रही होगी। वो कभी कभी ज्यादा आज्ञा पालन करना, ज्यादा पतिव्रता रहना, ज्यादा सती रहना, वो भी किसी किसी को क्या दे देता है, दुख दे देता है। इसलिए दुख है सुख है तो वही समझेगा, लेकिन यहां समझना कि हम उसको सुखी मानते हैं तो सुख कब, अभी तो उसने कोई कर्म नहीं किया ना, जस्ट ही हैज बॉर्न ओनली, अभी तो पैदा हुआ है, अभी तो कोई कर्म नहीं किया ना, तो कब का उसको सुख मिल रहा है। तो इस शरीर के पहले उसकी सत्ता थी, तो मतलब इस शरीर के पहले भी वो था, आज भी है, अब बुढ़ापे में आप कहते हो महाराज कुछ दान पुण्य कर दो तो हमारा परलोक सुधर जाए, तो यहां से जाने के बाद भी आप कहीं जाओगे रहोगे, तो बताओ आप इस शरीर के पहले भी थे, इस शरीर में भी हो, इस शरीर के बाद भी रहोगे, तो आप मरे कभी मेरे बता दो। चलो यदि परिवर्तन को आप मरना मानो, तो देखो एक बच्चा कितनी पढ़ाई करता है, अब बच्चा कहे मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगा क्योंकि इस पढ़ाई का सुख भोगने वाला वो जवान रहेगा, दाढ़ी मूछ वाला, दाढ़ी मूछ वाला धन जमा करता है, इकट्ठा करता है किसके लिए, उस सफेद बाल वाले बुढ़े के लिए। लेकिन ध्यान ना, चाहे बिना दाढ़ी मूछ वाला बच्चा था, चाहे कौन था, दाढ़ी मूछ वाला जवान था, चाहे सफेद बाल वाला बुढ़ा था, तीनों स्वरूप बदल गए, इन स्वरूप में सत्ता देने वाला तीनों क्या था, एक ही था। तो शरीर बदल जाएगा, इन शरीर में सत्ता देने वाला कौन रहेगा, एक रहेगा, उसकी कभी मौत, तो बताओ आप कब मरे हो, नहीं मरे ना, लगता भी है मैं मरूंगा नहीं, साबित पड़ोसी भी लगता होगा हम क्या करें, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी नहीं प्रॉब्लम, वो तो मरे मनावे हमें, लेकिन मरने वाले हम नहीं। दूसरा एक आपकी शिकायत है, क्या शिकायत है, महाराज जी मैं सबको जानता हूं, सबको पहचान, रग रग को दुनिया को जानता हूं, लेकिन आज तक मुझे कोई पहचान नहीं पाया। बोलो भाई, बोलते हो नहीं बोलते, पत्नी के साथ रहते 30 साल हो गए लेकिन आज तक पत्नी मेरे को पहचान पाई, पति के साथ रहते इतने साल हो गए लेकिन पति पहचान नहीं पाया, ये शिकायत है का आपका स्वरूप है। बोलो भाई, स्वरूप माने क्या हुआ, हम आत्मा यदि हैं, शास्त्र क्या बोलता है, हम क्या हैं, शरीर नहीं है बल्कि क्या है, तो आत्मा सारी दुनिया को प्रकाशित करती है, लेकिन उस आत्मा को कोई प्रकाशित है, तो आप सारी दुनिया को जान सकते हो लेकिन सारी दुनिया आपको जाने, क्योंकि आत्मा अनात्म को प्रकाशित तो कर सकती है लेकिन अनात्म जगत में इतनी सत्ता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कोई आत्मा को प्रकाशित करे। इसलिए मैं क्या हूं, आत्मा इसी से सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हम सबको जानते हैं लेकिन मुझे कोई जानता नहीं है, क्योंकि आत्मा ही स्वयं प्रकाश है, सबको प्रकाशित करता है, लेकिन आत्मा को प्रकाशित जड़ वस्तु कैसे कर सकती है। तीसरा, हम क्या है, आनंद रूप है। ये प्रैक्टिकल आपको खुद अनुभव होता है गहरी नींद में, सुसुप्ति में, सुसुप्ति में जो सुख मिलता है वह किसी विषय का नहीं है, वह आपका अपना सुख है। दूसरा, आप दुनिया में किसी को दुखी करना चाहते हो क्या, बोलो भाई, आप दुनिया में हर व्यक्ति को क्या देना चाहते हो, सुख। तो यदि आपके भीतर जो चीज होगा वही तो आप दूसरे को दोगे कि नहीं दोगे, बताओ, आपके पास जो चीज होगा ही नहीं क्या आप दूसरे को दे सकते हो क्या, तो हम दूसरे, हमारे पास सुख होगा तभी तो हम दूसरे को क्या देना चाहते हैं, सुख। पत्नी पति को क्या देना चाहती है, सुख। माँ बेटे को क्या देना चाहती है, सुख। पड़ोसी पड़ोसी क्या देना चाहता है, दुख के सुख। भाई हम सुख ही देना चाहते हैं, अब पड़ोसी उस सुख को क्या मान लेता है, दुख मान लेवे उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं हमेशा यही व्यवहार करना चाहता हूँ, मेरे किसी व्यवहार से किसी को कोई दुख न मिले, सब क्या होवे सुखी होवे। तो जब आपके भीतर भावना सबके सुखी होने की है, इससे सिद्ध हुआ कि आप क्या हो, सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख होगा तभी आप दूसरे को दोगे, और जिसके पास सुख होगा ही नहीं वो क्या दान देगा बताओ, तो आप सुख स्वरूप हो गए नहीं बताओ, तो आप सत हो, चित हो, सुख हो, सुख स्वरूप हो, असंग हो कि नहीं हो, जागृत के सारे वैभव को छोड़ करके सपने में चले जाते नहीं चले जाते, यदि आप असंग न होते तो जागृत के पदार्थों को छोड़ते ही नहीं, लेकिन इसको छोड़ देते हो नहीं छोड़ देते, झटके में कहां चले जाते हो, स्वप्न में, स्वप्न के भी वैभव को छोड़ करके कहां चले जाते हो, सुसुप्ति में, हमने बचपना का त्याग किया जवानी में आए, जवानी का त्याग किया कहां आए बुढ़ापे में आए, यदि हम असंगता हमारे भीतर न होती ना तो हम बचपने को क्या करते पकड़ के बैठे रहते, कभी जवान है तो ये असंगता हुई नहीं हुई आपकी बताओ। सर्वव्यापकता मैंने उस दिन बताया था, आप सोते हो तो एक शरीर में यहां भी हो और दूसरे शरीर में कहां हो, स्वप्न में भी हो, तो एक साथ आप दो दो शरीरों में हो नहीं हो, और स्वप्न में जितने शरीर दिख रहे हैं उन सब में भी हो, तो एक साथ आप कितने शरीरों में हो, संसार के सारे शरीरों में हो, इसलिए आप क्या हो, सर्वव्यापक हो। ये हमारे युक्तियों से न सीखना, अब जो मैंने युक्तियां खोजी हैं उन सारी युक्तियों को आप लोग क्या करना, स्वयं विचार करना, तो आप हो जाओगे क्या, ज्ञानी, क्या हो जाएंगे, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, फिर आपका व्यवहार कैसे चलेगा कल मैंने बता दिया, आप शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से अपने आप को क्या मानोगे, अलग मानोगे, जैसे गाड़ी पे बैठते हो, रथ पर बैठते हो, तो आप अपने आप को रथ मानते हो या रथ से अलग मानते हो, तो शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ भी हम शरीर से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, आपके दो स्वरूप रहेंगे, ध्यान देना, जैसे एक फिल्म एक्टर दो तरह से काम करता है, एक तो जो रोल कर रहा हो, लेकिन रोल भले कर रहा है लेकिन अपने आप को रोल वाला कभी मानता नहीं है, तो आप कभी पिता बनोगे, कभी माता बनोगे, कभी पुत्र बनोगे, कभी भाई बहन बनोगे, कभी बहन बनोगे, लेकिन अंदर से क्या रहोगे, मैं तो असंग निर्लिप्त चित्त सत आनंद स्वरूप क्या हूं, आत्मा हूं। तो फिर इस शरीर का कोई व्यवहार, इस उपाधि का कोई व्यवहार आपको दुखी, आप शरीर जैसे दिखते हो लेकिन शरीर होते नहीं हो, शरीर जैसे आप दिख मात्र, जैसे जली हुई लकड़ी, लकड़ी जैसे दिखती है केड़ी मगड़ी, लेकिन वो किसी व्यवहार के काम आती, छुओ तो उससे किसी को डंडा मारो तो उस लकड़ी को उठा करके लगेगा क्या, तो ए शरीर के साथ रहता हुआ भी शरीर का कोई बंधन उसको बाधित नहीं करता है। वही बताया 123वें श्लोक में, जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है वह आत्माकारी हो जाता है, क्या हो जाता है, आत्माकारी हो जाता है, देही युद्यस्यते, वह देही के समान दिखता है परंतु देही नहीं, देह नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, केवल ही आत्मा, वह केवल आत्मा ही हुआ करता है। कैसे, एक और उदाहरण, कई युक्तियों से समझो भाई, यथा एव आदर्श मध्यस्थ, उसमें नहीं है, अष्टावक्र गीता का श्लोक है, एक आदर्श है, आदर्श माने, हाँ अरे आदर्श माने शीशा, शीशे के भीतर कोई परछाई है, देखो परछाई किसके, शीशे के भीतर है कि बाहर है, शीशे के भीतर है लेकिन बाहर दिखती है, लेकिन है भी नहीं, ये भी तंग, लेकिन उस परछाई के आजू बाजू दाएं बाएं कौन है बताओ, चारों तरफ शीशा ही शीशा है, और वो परछाई शीशे में ही है लेकिन शीशे से बाहर दिखती है, और परछाई है भी नहीं, देखा वस्तु है भी नहीं, ऐसे इस तथा एव अस्मिन् शरीरे अन्तः, उसी प्रकार से शरीर के भीतर बाहर सब जगह कौन है, परमेश्वर ही परमेश्वर है, और उस परमेश्वर में ये शरीर रूपी परछाई परमेश्वर से क्या दिख रहा है, अलग सा दिख रहा है, लेकिन अलग है? भाई देखो अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को छोड़ करके क्या एक पल कहीं रह सकती है क्या, बोलो, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। स्वामी एकानंदपुरी जी महाराज सीधे कहते हैं, आप सुबह सुबह क्या देख के आए थे, दर्पण देख के आए थे ना, तो दर्पण देखा था कि अपना मुंह देखा था, सही बताना। आपकी आपकी परछाई के बीच में क्या था? दर्पण था। लेकिन दर्पण दिखा था कि आपका मुंह दिखा था? बोलो, देखते हो दर्पण और कहते हो मैं मुंह देख रहा हूं, ना ना। और जो मुंह देख रहे थे वह किसके ऊपर टिका हुआ था? दर्पण ना हो तो मुंह टिकेगा क्या? ऐसे हम सारे संसार में देखते हैं उस परमात्मा को। किसको देखते हो? सारे संसार में हम किसको देखते हैं? उस परमात्मा ही को। इन परमात्मा को देखते हुए भी हम उसको देखते नहीं और कहते हम दुनिया को, संसार को देख रहे हैं, जबकि संसार है नहीं। क्या देख रहे हैं? अरे भाई कई उदाहरण है, फिल्म में नदी, तालाब, लड़का लड़की सब दिखता है, लेकिन बताओ देखते हो प्रकाश की किरण को, लेकिन आप क्या बोलते हो? मैंने क्या देखा? लड़का लड़की नदी तालाब, क्या गजब का डांस किया था। वहां कोई डांस था क्या? वहां क्या था? तो ऐसे ही संसार में एक सत्ता है, कौन? अच्छा, जितने भी वस्त्र देखते हो सारे वस्त्र में क्या देखते हो? कब छूते क्या हो? लेकिन क्या कहते हैं, क्या गजब के कुर्ते हैं, क्या गजब के पैजामे हैं, क्या गजब के दुपट्टे हैं, कितने कपड़े आप देख लेते हो, लेकिन देखते क्या हो? सूत को छोड़ करके एक पल भी कोई वस्त्र नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से यहां बता रहे हैं कि जैसे एक दर्पण के आगे पीछे दाएं बाएं बाजू क्या दिखता है? नहीं, तस्वीर के आगे पीछे दाएं बाएं दर्पण ही है। उसी प्रकार से हम आओ उस तस्वीर में भी कौन है? दर्पण ही है, लेकिन उस तस्वीर दर्पण तस्वीर से अलग दिखती सी प्रतीत होती है। उसे ये संसार उस परमात्मा से अलग सा दिखता है, लेकिन अलग परमात्मा कहाँ है? चलो आप तो ज्ञानी हो गए धीरे धीरे। नहीं, लोग कहते हैं हे अल्लाह हे परमात्मा, लगता ऊपर है नीचे नहीं है। परमात्मा कहते ही कहाँ हाथ जाता है? वाह खुदा अल्लाह, ऊपर जाता है। अरे क्या परमात्मा यहाँ नहीं क्या? अरे परमात्मा में ओता प्रोत हो। जब तक परमात्मा के स्वरूप को हम नहीं जानते थे ना, तब तक ऊपर नीचे दाएं बाएं आंख फैलाते थे। अब तो आंख बंद करने खोलने कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको अपने बचपन की घटना बताता था कि मैं जंगल गया, सोचा आसमान को छू लूं। सही था, 5 किलोमीटर गया था जंगल में आसमान को छूने के लिए, क्योंकि ऐसे आसमान हो जाता है ना, तो हमने सर छू के आ जाऊंगा, घर में बताऊंगा मैंने आसमान को क्या क्या करके आया हूं। और जितना दूर गया आसमान उतना दूर भागता गया। ध्यान देना मैं बोल रहा हूं क्या, जितना दूर मैं चलता गया आसमान उतना दूर भागता गया। बच्चा था, जंगल में डर गया कि कहीं जंगली सुगर उगर न पकड़ ले, मैं कहीं रास्ता न भटक जाऊं। फिर घर वापस आ गया, लेकिन किसी से अपनी नासमझी बताई नहीं। लेकिन जब वेदांत कथा सुना न, तब समझ में आया आकाश को छूने के लिए एक कदम भी बढ़ाने की आवश्यकता, आसमान को देखने के लिए ऊपर नहीं करने की आवश्यकता। आजू बाजू दाएं बाएं सब क्या है? आकाशी है। और जैसे हम करें जितनी दूर में गया आकाश भागता गया, आकाश कभी भागा क्या? ऐसे हम कहते हो भाग गया, लेकिन भागा? ऐसे हम सब बोलते हैं कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं माने उस आत्मा, वो आत्मा दूर चला गया, परमात्मा हमसे अलग हट गया, परमात्मा हमसे नाराज हो गया, लेकिन ये सब उसमें अंदर इसी वृत्ति कोई है ही नहीं। वह तो हमेशा हमारे पास ही है, हमें हर पल हर रूप में वही सत्ता दे रहा है। और सत्ता देकर के हमारी सिद्धि भी वही कर रहा है। उससे हम अलग रह करके एक पल सोच सकते हैं क्या? कभी कभी आता है, देखो बचपने में भगवान सो गए, सोते नहीं सोते हैं, इसमें सो रहे जग रहे हैं, चातुर्मास से सोते हैं, और अब जी जगेंगे कब? दीपावली के आसपास, देव क्या है, हाँ देव उठावनी एकादशी के दिन क्या करेंगे? जग जाएंगे। अब जब परमात्मा सो गए तो बताओ दुनिया की सत्ता रहेगी क्या? ये तो हम अपने मन के एक भाव को क्या कहते हैं, मात्र आरोपित कर लेते हैं, जबकि न परमात्मा कभी, वो तो हमेशा ही, हम सो जाते हैं लेकिन वो क्या करता है, प्राणों को सत्ता देकर जागता रहता है, कभी वह सोता है ही नहीं। तो अब परमात्मा के रूप को जाना कि नहीं जाना? अब आपके परमात्मा सोते ही जागते हैं, बोलो। पहले रोज सुलाते थे, रोज जगाते थे, हम तो कभी कभी मजाक बस बोल देते हैं, उनसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजाक बस। अरे भाई परमात्मा को कभी तो बड़ा कर दिया करो, अपने आप नहा धो ले। बचपन से लेकर के छोटे थे, हम लगता है खिलाते पिलाते हो रहे भगवान को। भाई छोटे से लड्डू गोपाल आए थे, उनको खिलाओ पिलाओ तो थोड़ा सा 10 साल बाद क्या हो जाए, इतने बड़े हो जाए फिर और जवान हो जाया। और आपके 20 साल बाद भी भगवान क्या रहते हैं, छोटे के छोटे रहते हैं। अरे आप भगवान को छोटा इसलिए बनाना चाहते हैं, भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जैसे एक माँ बच्चे को अपने अनुसार नचाना चाहती है, इसलिए भगवान को बड़ा होने नहीं देती है। एक माता अपने बच्चे को कभी बड़ा होने देती क्या? जैसे मैं कहता हूं वैसे तू कर, ऐसे परमात्मा को भी हम वैसे ही आज्ञा देते, उठ चल बैठ चल खा चल सो जा। अरे उसको कभी क्या करने दो, बड़ा भी कर दो, मतलब साधना के स्तर में भी आप क्या करो, कब तक उस परमात्मा को एक परिच्छिन्न रूप में देखोगे? अब तो इतनी बुद्धि को व्यापक कर लो कि आपको परमात्मा को देखने के लिए न आंख बंद करने की आवश्यकता, आंख खुली है तो बंद है तो न बंद करने का आग्रह न खोलने का आग्रह। जैसे भी हो जिस भी रूप में रहो, आपको कौन सी सत्ता दिखे वही सत्ता दिखो, नहीं दिख सकता। अरे दिख ही रहा है लेकिन अब देखो ना तो हम क्या करें। यथा न तो ये तो भिन्ना तरंगा थे न बुदबुदा, उसमें नहीं है अभी अष्टावक्र का ही लेके उदाहरण चल रहा। जिसे जल से भिन्न तरंगे फेन बुदबुदे है नहीं, कुछ भी देख रहे हो क्या देख रहे हो, जल ही। आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम, उसी प्रकार से यह सारा आत्मा से विनिर्गत निकला हुआ, निकला क्या है उसी में ही अध्यासित कल्पित जो है संसार है, वह संसार भी उस आत्मा से लगे। भाई जल से तरंग उठ के कहां लग जाएगी बताओ, हैं? जल को छोड़ करके तरंग फेन बुदबुदा रह सकता है क्या? बस जल से उत्पन्न मान लेते हैं, लेकिन उत्पन्न भी क्या मानोगे बताओ? ऐसे उस आत्मा से उत्पन्न हुआ है जगत मान लेते हैं, लेकिन उत्पन्न उत्पन्न कुछ हुआ नहीं, यह जगत भी उस आत्मा से अलग है ही नहीं। जिसे तंतु मात्र भवेत पक है, जिसे तंतु मात्र सारे वस्त्र क्या हैं, तंतु हैं धागा मात्र हैं, उसी प्रकार से विचार करो कि आत्म तन मात्र एव इदम तदवत विश्वम विचारता है। विचार करो तो सारा संसार ही क्या दिखेगा, आत्मात्र दिखेगा। लेकिन वो आत्म अज्ञानात जगत भाती, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान न हो न तब तक जगत प्रतीत होता है। आत्म ज्ञानात्म भाष से अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया जगत की सत्ता भी लय हो जाती है। जैसे रस्सी का अज्ञान हो जाने से क्या दिखता है, सर्प माला, ज्ञान हो जाए तो सब कुछ गायब। तो आपको अब क्या हो गया है, ज्ञान हो गया ही नहीं हो गया। अब वस्त्र देखना तो क्या देखना, सूत दिखना, जल में वाह तरंगे क्या उठे क्या बुलबुले हैं क्या झाग आ रहे हैं। ये तो हम लोग नया नया जब आते हैं ना पहले समुद्र किनारे तो वाह बड़ा आनंद आता है, और 10 दिन रह जाओ तो सब क्या दिखता है, समुद्र किनारे जिनके घर है तभी खिड़की भी नहीं खोल के झांकते हैं, 4 दिन अच्छा लगता है। सबके रूप में क्या है, जल है। सारे शरीरों के रूप में 5 भूत मान लो, और ऊपर उठते जाओ तो सबके रूप में कौन है बोलो। एक युक्ति मैंने बताया था आपको, याद है नहीं है फिर बता दूं। एक जमीन में बीज बोया, जमीन क्या बोया, बीज, और बीज 100 किलो का पेड़ तैयार हो गया। तो जो पेड़ तैयार हुआ वो सारा किसका विकार है बोलो भाई, मतलब उसमें उपादान कारण मिट्टी मानोगे नहीं मानोगे, थोड़ा क्रम से चल रहे हैं, नीचे से चल रहे हैं, क्या मानोगे? अर्थात पत्ता भी क्या है, मिट्टी है, फल भी क्या है, मिट्टी है, फूल भी क्या है, मिट्टी है। अभी तक हमें क्या दिखता था, ये पत्ता है, ये फल है, ये फूल है, ये क्या है, तना है। अब सबको क्या आपने देख लिया, दिखा नहीं दिखा भाई, मिट्टी है कि नहीं मिलता, बस मिट्टी का शोधित रूप है मान लो, और क्या। जैसे आपके यहां आरओ का है ना पानी, तो आरओ में क्या कितना वो आता है, कहते हैं 8 गिलास पानी बहता है तो 1 गिलास पानी निकलता है, ऐसा बोलते 4 गिलास या जो भी है, तो 8 गिलास में 1 गिलास शुद्ध निकालता है आरओ वाला पानी है, नहीं बिस्लेरी का जो बोतल आता है। तो ऐसे ही मिट्टी का शोधन, मिट्टी को शोधित करके, बीज ने मिट्टी को शोधित करके क्या बनाया, कम शोधन तना है उससे ज्यादा शुद्ध कौन होगा, पत्ती है उससे ज्यादा शुद्ध क्या होगा, फल होगा, फूल होगा उसके ज्यादा शुद्ध क्या होगा, फल होगा उससे भी ज्यादा शुद्ध क्या होगा, फल का रस होगा। लेकिन है सब क्या, तो इतने रूपों में सबको मिट्टी देख लिया तो भी बहुत शांति मिल गई, हम भी क्या हैं? उसी पत्ते को खा गए तो हम भी क्या बन गए? मिट्टी है। और क्या है? बाल भी मिट्टी, नाक, हाथ, हड्डी सब क्या है? वही मिट्टी तो हमने खाया है। और कौन सी? पत्ता खाया, फल खाया, फूल खाया, वही मिट्टी खा करके ये शरीर बना। तो शरीर भी क्या है? तो सारा संसार मिट्टी से अलग है क्या? अब सोचना, जल एक बूंद डाला था 10 किलो मिट्टी में, 1 ग्राम का बीज डाला है, और वह पेड़ 50 किलो का तैयार हुआ। अब बाद में यदि गमले से पेड़ को निकाल करके मिट्टी को झाड़ा तो वह 10 के 10 किलो ही मिट्टी रही। अब बताओ ये पेड़ कहां से पैदा हो गया? मेरी बात समझना, गमले में कितना डाला था? 10 किलो मिट्टी, 1 बीज डाला, और उस बीज से जो वृक्ष बन गया कितने किलो का? 50 किलो का। अब उस गमले की मिट्टी मैंने निकाल करके झाड़ा पूरी तरह से, और फिर तौला तो कितनी थी मिट्टी? अब बताइए 50 किलो कहां से आ गया? बोलो। तो कहोगे महाराज जी पानी डाला था। तो पानी डाला था ना, तो या खाद डाला था, तो रस, रस माने रस है ना, खाद का रस ही तो गया ना, पानी डाला ना, खाद पानी का रस, तो अर्थात रस ही मतलब जल ही पत्ता बना, जल ही फूल बना, जल ही क्या बना? फल है, और जल ही उसका तना है। अर्थात जल से पृथक पेड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो सारा संसार भी जल से पृथक कोई चीज है ही नहीं। अरे जाके देख लेना गोवा में, समुद्र जब आता है ना लहरें, यहां तो नहीं दिखाई देता, गोवा में दिखता है। और जब समुद्र का पानी जाता है तो जो जमीन है ना, सारी की सारी जमीन मछलियों से, छोटे छोटे कीड़ों से क्या पट जाती है। मतलब पूरी समुद्र में जल, मतलब चाहे मछली, चाहे कीड़ा, चाहे झींगा, चाहे जो भी हो, वो सब जल से अलग है। उनकी हड्डी, पसली, मांस, मदरा सब कुछ क्या है? जलमय ही है। जैसे मछली का एक पूरा संसार जल में ठसा छट क्या है, जितने भी जीव हैं सब क्या है? जल रूप है। ऐसे सारा संसार भी क्या है? बोलो भाई, अभी जल में आओ, फिर बाद में चलते हैं, क्रम से चल रहे हैं, जल रूप है। अच्छा, था जल नीचे से ऊपर गया तो ऊपर ले जाने वाला कौन होगा? तेज मानो अग्नि। यदि अग्नि न होवे तो ऊपर आपकी गर्मी न होवे शरीर में, तो शरीर रहेगा क्या? सब में एक गर्मी है, तो सब उष्मा रूप है, सब क्या है? अग्नि रूप है। लेकिन अग्नि की सत्ता किसके अधीन है? वायु के अधीन है। तो सब कौन है? वायु रूप है। और वायु भी किस पर अधिष्ठित है? कहां रहेगा? आकाश में। तो सब किस क्या है? आकाश है, कुछ है नहीं, दिख रहे हैं आकाश जैसा। और आकाश भी किसके ऊपर आरोपित है? ब्रह्म के ऊपर। इसलिए सारा संसार क्या हो गया? ब्रह्म ही रूप है। इस युक्ति से अपने आप को हमने क्या समझा? स शरीरम इदम विश्वम न किंचित निश्चितम। सारे शरीर के साथ यह सारा का सारा विश्व कुछ है ही नहीं, यह पक्का निश्चय हो गया। तो है क्या? कुछ है नहीं, शून्य है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्या है? शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा। यह सारा का सारा संसार क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। जब एक ही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो कस्मिन कल्पना अधुना। अब कल्पना भी होवे तो किसमें होवे बताओ? कल्पना करने वाला भी क्या चाहिए? दो चाहिए नहीं, जिसकी कल्पना किया जाए और जो कल्पना करे। और जहां एक सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो अब बताओ कल्पना भी करे तो? बोलो भाई किसकी करें? इसलिए अब मन पूरी तरह से क्या हो गया है? शांत हो गया। देखो ज्ञान का प्रसंग है, इसलिए मैंने इतना बहुत विस्तार से बता दिया। अब इसको आप समझो, क्योंकि समझना अनुभव करना किसका काम है? आपका अपना है, हम क्या बता सकते हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं महाराज, जब एक ही परमात्मा है तो अनेक क्यों दिख गया? है नहीं, जब एक ही है, एक सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो फिर अनेक कैसे दिख गया? तो इसको बता दें 124वां श्लोक में लेंगे, 124 मिल गया। प्रतिफलति भानुरेको अनेक शराओदकेशु यथा तदवत असौ परमात्मा ह्येको अनेकेषु देहेषु। ना ना, जितना ज्ञान देना था मैंने आपको दे दिया, अब इसके बाद ज्ञानवान नहीं है। अब तो जो संशय हैं उन संशयों का क्या है, समाधान है। बस जो हमारी वृत्तियों में कभी कभी कोई संशय उठता है उसका समाधान है। कहते इसका अन्वय करेंगे, आएगा यथा माने जिस प्रकार से, यथा बाद में है ना, यथा माने जिस प्रकार से अनेक शराव ऊद केसु, शराव होता है किसको, कसोरे को, कसोरा जानते ना, कुल्हड़ की कसोरा क्या होता है बोलो, कुल्हड़ कसोरा दोनों ही क्यों होते हैं, कुल्हड़ माने गिलास, कसोरा माने कटोरी, ठीक ना, वो चौड़ा होता है कटोरी की तरह होता है, कुल्हड़ क्या होता है एक गिलास की तरह होता है, वो पानी पीने में आता है, सराव जो है कसोरा जो है सब्जी, रसेदार सब्जी उसमें डाल के खाते हैं। पहले अब तो सब प्लास्टिक के चलने लगे हैं, जमाना किसका हो गया है, प्लास्टिक पत्ते का। पहले गांव में कसोरे चलते थे, तो चलो जैसे शराव में कसोरे में जल होवे, तो जिस प्रकार से जल होने पर उस कसोरे में क्या होता है, एक भानु, एक ही भानु प्रतिफलित हर कसोरे में परछाई पड़ जाती है, किसकी, एक सूर्य की, के हर कसोरे में पड़ने के लिए 50 सूर्य चाहिए, एक ही सूर्य कितने कसोरे में पड़ जाएंगे, 50। तदवत माने उसी तरह से असौ परमात्मा, जो यह परमात्मा है ना, ही एको निश्चय ही कितना है, एक ही है, निश्चय एक ही है, लेकिन अनेकेशु देहेशु प्रतिफलिति, अनेक देहों में रखे हुए जो जल है, जल माने अंतःकरण है, उस अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो करके अनेक सा दिख जाता है, लेकिन अनेक सा दिखने पर भी वह अनेक होता नहीं है। इसको अध्यात्म रामायण का राम हृदय स्त्रोत्र कभी पढ़ना, हमें अध्यात्म रामायण भी रखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है। एक बार पढ़ने से भी नहीं काम चलेगा, कई बार उसको पढ़ो, गीता प्रेस की कृपा है, वहां राम हृदय राम गीता इतना गजब का उपदेश है कि यदि बुद्धि में गम्य हो गया तो सारा समाधान हो जाता है। वहां यही बताया गया कि जिसे आकाश एक है अनेक है, लेकिन एक आकाश कितना दिखता है, अनेक दिखता है, तनेक दिखता हुआ भी अनेक हो जाएगा क्या, ऐसे चैतन्य कितना है, एक है अनेक है, अब अनेक एक होता हुआ भी अनेक दिख रहा है, दिखने को क्या फर्क पड़ता है, अब उसमें आप कौन से चैतन्य हो बोलो भाई, जल अवक्षिन अंतःकरण अवक्षिन चेतन हो, अथवा अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य हो, अथवा शुद्ध चैतन्य हो, लेकिन मानते क्या है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य को हम अपना स्वरूप मान लेते हैं, और उसी को तो मैं कहता ना, मैंने बताया ना अभी, जब उस चैतन्य की परछाई अंतःकरण में पड़ती है तो मैं किस फुरड़ा हो जाती है, और जैसे मैं स्फुरित हुआ तो हम किसको मैं मान लेता हूं, इस शरीर को ही मैं मान लेता हूं, तो मैं किसको आज तक किसको मानता रहा, इस परछाई को अपना स्वरूप मानता रहा, जबकि जिसकी परछाई पड़ रही है उसकी तरफ हमारी दृष्टि गई नहीं है, तो भाई परछाई तो मिथ्या होती है, परछाई की वास्तविक सत्ता होती नहीं है, फिर उस मिथ्या को अपना स्वरूप क्यों माने बैठे हो, नहीं महाराज जी अंतःकरण से घिरा हुआ चैतन्य मान लो, अंतःकरण से क्या मानो, तो भाई जो अंतःकरण है वो भी अविद्या का कार्य है, जो अविद्या का कार्य है ना उसकी सत्ता होती, जैसे मृग मरीचिका का जो जल है वह अविद्या से अज्ञान से पैदा हुआ है, वो जल है क्या, वहां जल सा दिख रहा है, ऐसे अंतःकरण मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को हटा दो तो अंतःकरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आप क्या बन जाओगे, ब्रह्म ही हो जाओगे। इसी को बताया श्रुति में भी है, यथा ही अयम ज्योतिरात्मा, जैसे यह प्रकाश रूप आत्मा, विभास्वानो अपो भिन्ना बहुधा एकोनुगक्षण, जिसे सूर्य अनेक प्रकार के जल अनेक सा हो जाता है, उपाधि के कारण भेद दिखता है, इन वास्तव में भेद होता, उसी प्रकार से आत्मा में भी कोई भेद है ही नहीं, उपाधि के कारण भले अलग अलग सा दिखे लेकिन अलग अलग दिखता हुआ भी वह क्या होता है, एक ही होता है। अब आप जान गए वही आप एक हो, एक ही हो ना, तो महाराज जब एक ही परमात्मा है तो एक आदमी मर जाए तो सब मर जाना चाहिए, एक आदमी सुखी हो जाए तो सबको क्या हो जाना चाहिए था, सुखी हो जाना चाहिए। एक जब एक ही सबके भीतर विद्यमान है, वही सुख दुख का सबका अनुभव कर रहा है, तो एक के दुखी होने पे सब दुखी सुखी, एक के मुक्त हो जाने पे क्या हो जाना चाहिए था, सब मुक्त हो जाना चाहिए था, ये अनेकता क्यों आ रही है? तो इसका समाधान करने के लिए 125वां श्लोक, दैवा देख सरावे भगने किमवा बिलियते सूर्य प्रतिबिंब चंचल त्वात अर्क किम चंचलो भवती। कहते दैवात माने दैव योग से, मतलब किसी कारण बस, दैव योग माने क्या हुआ, किसी कारण बस से। एक शरावे भगने, एक शराव माने एक कसोरे के टूट जाने पर किम वा बिलियते सूर्य, तो क्या सूर्य लय हो जाएगा क्या? अरे एक शराव का सूर्य खत्म सा हो गया तो क्या सूर्य खत्म हो जाएगा क्या? तो एक अंतःकरण टूट गया, या एक घड़ा अंतःकरण नहीं मानो, शराव क्या हुआ, शराव है, शराव में क्या है, जल है, जल में परछाई पड़ गई, बस इतना ही है। शरीर है, शरीर में क्या है, अंतःकरण है, अंतःकरण में क्या पड़ गया, चैतन्य की परछाई पड़ गई। तो अंत देखो भाई, अंतःकरण जल न किसी बर्तन में तब तक रहेगा जब तक बर्तन मजबूत रहेगा, बर्तन को रखने लायक रहेगा, बर्तन उसको रखने लायक रहेगा। जब उस अंतःकरण की वासनाओं की सिद्धि इस शरीर में नहीं होगी तो शरीर जर्जर हो गया, तो वो अंतःकरण इस शरीर को छोड़ के क्या हो जाएगा, अलग हट जाएगा। तो जैसे घड़ा टूटा, कौन सा शरीर रूपी घड़ा टूटा, तो क्या सूर्य टूट जाएगा? जो इसमें परछाई पड़ी है, जिसकी परछाई पड़ी है, वह परछाई क्या, वो जिसकी परछाई पड़ी वो टूट जाएगा क्या? तो एक के मरने पर भी अन्य जगहों की परछाई तो पड़ी रहनी पड़ रही है, तो जो जिसकी परछाई टूटी है वो इस शरीर को छोड़ करके जैसा अंतःकरण होगा उसके अनुसार अपना दूसरा शरीर धारण करके वहां उसकी परछाई पड़ जाएगी। उसकी परछाई जब तक अंतःकरण रहेगा तब तक समाप्त होने वाली। भाई देखो, अंतःकरण इस शरीर को छोड़ेगा, इस शरीर को छोड़ेगा कौन, पानी, मान लो पानी घड़े के छोड़ के, लेकिन जहां जहां पानी रहेगा वहां वहां परछाई पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और उस परछाई के पड़ने से ही पानी में गति आएगी और पानी बहेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब कब तक बहेगा, जब तक उसको दूसरा गड्ढा न मिल जाए। तो इस शरीर को छोड़ करके अंतःकरण निकलेगा तो कब तक निकलेगा, अंतःकरण में परछाई पड़ी है, अंतःकरण जड़ है ध्यान देना, लेकिन परछाई के पड़ने से वो क्या दिख रहा है, चेतन सा दिक्कत के, वो तब तक घूमता रहेगा जब तक उसके भोग के योग्य दूसरा शरीर, अज्ञानी का क्या होता है, उसकी जल ही सूख जाता है, घड़े का पानी क्या हुआ, इतना पानी लगा रहता है कि शरीर का ज्ञान होता रहे बस, ज्यादा नहीं ज्ञान होता उसको, ठीक है ना, किसका। और जैसे घड़ा टूटता है तो पानी बहने लायक नहीं रहता है, घड़े के टूटते ही पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, और जो परछाई अलग दिखती है वह परछाई कहां दिख जाएगी, वो बिंब प्रतिबिंब बिंब में मिलकर के एक हो जाएगा, जो अलग सा दिखता था उसकी अलग सी दिखती हुई प्रतीति भी क्या हो जाएगी, समाप्त होकर के वह ब्रह्म ही रूप हो जाता है। जिसे एक शराव के टूट जाने पर सूर्य टूटता नहीं है, एक प्रतिबिंब के हिल जाने से, अंतःकरण के हिल जाने से जिसे सूर्य हिलता डुलता नहीं है, ऐसे अंतःकरण में अनेक प्रकार के व्यवहार होने पर भी उस सूर्य में कोई व्यवहार होता नहीं। वह सूर्य तो हर अवस्था में क्या रहता है, शांत रहता है, लेकिन हमारी कमी क्या, हम अंतःकरण के व्यवहार को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, जबकि हम कहते हैं आज मेरा मन बड़ा अशांत है, बोलते नहीं, उसे बोलना था मेरा मन, लेकिन मैं बोलता हूं मैं अशांत हूं, मैं अशांत नहीं होता कभी, मैं तो हमेशा क्या रहता हूं, शांत ही रहता हूं, लेकिन अंतःकरण की चंचलता को अपने ऊपर आरोपित करके मैं मान लेता हूं कि मैं अशांत हूं, जबकि मैं अशांत नहीं हूं, मैं क्या रहता हूं, शांत ही रहता हूं। अब ये कार्य कैसे कर रहा है वो परमात्मा, यदि सभी कार्य परमात्मा ही कर रहा है तो परमात्मा को क्या होना चाहिए, पुण्य पाप का भागी बनना चाहिए, कैसे वह भागी नहीं बनता है, इस पर चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग भी गति बढ़ाना है, अब जितना ज्ञान देना था ना वो मैंने ज्ञान आपको दे दिए। अब आपके भीतर जो जो संशय हैं, कभी कभी कई लोग पूछते हैं ना इसे संशय। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी जब तुम ब्राह्मण हो तुम्हें हम बचपन की बात है चिकोटी काटेंगे, तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए ना, ऐसा उसने जिद किया। हम कहा भैया तू काट ले, हमारा दोस्त का बाप था, हम कहा तू काट ले, इतना ज्ञानवान नहीं था, अभी दर्द होगा इसी बात, लेकिन दर्द भी किसको हो रहा है, मन को ही हो रहा है, ध्यान देना। मन का संबंध यहां है इसलिए दर्द हो रहा है, यदि मन का संबंध यहां सचा दो तो दर्द, क्योंकि हमने जमाया, बहन की शादी थी तो दिन रात कहां जुटा हुआ था शादी के काम में, पांव में कहां कांच लग गया, कितना खून बह गया, मुझे दो दिन तक होश अब नहीं था। और दो दिन के बाद जब पानी में पांव पड़ा किसी कारण के बाद तो छन्न वो तो होता ना, थोड़ा चुन 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 सा हुआ, तब देखा तो काफी खून बहा हुआ है, काफी घाव था, लेकिन दो दिन उस घाव का क्यों नहीं था पता, क्योंकि मन का संबंध वहां नहीं था, ध्यान ना, मन का संबंध कहीं और काम में लगा हुआ था। तो दर्द दर्द किसको एहसास हो रहा है, मन को। तो मैं उन्होंने मेरी चिकोटी काटना शुरू कर दिया, हम भी अपने मन को थोड़ा लगाना चाहे इधर उधर, और सही बता उन्होंने खून निकाल लिया, लेकिन हम भी धैर्य के बल से शांत रहे, थोड़ा दर्द तो हुआ ही नहीं, मैं कहता दर्द नहीं हुआ, लेकिन धैर्य के बल से अपने मन को शांत किया रहा, फिर कहा हाँ ठीक है भाई, जान के बाद दर्द नहीं होगा। हमने कहा कि चलो आपने माना तो कहने का भाव ज्ञान के बाद न फिर दर्द मन का शरीर का सब कुछ हो जाएगा, हम उससे क्या हो जाएंगे असंग हो जाएंगे, इसके पाप पुण्य से हम अलग हट जाएंगे, और जो भी संशय है वो सारे संशयों का समाधान होगा, क्योंकि संशय रहित ही हमें ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए। तो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।